لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم مغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: فاخلع عليك فإنك بالواد المقدس طوى. الصلوات عزادارانِ مظلومِ کربلا، مسلسل گفتگو قرآن اور اہلِ بیت علیہ السلام کے اعتبار سے جاری و ساری ہے، اور یقیناً آج کی اس مجلس میں ایصالِ ثواب کا بھی عنوان شامل ہے، اور یہ ہم اہلِ بیتِ اطہار کے چاہنے اور ماننے والوں کا انداز ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے اعتبار سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو فرش عزا بچھا لیا کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ فرش وہ فرش ہے کہ جس پر پرسہ لینے والے خود بھی تشریف لے کر آتے ہیں، معصوم ہستیاں اس فرش پر آتی ہیں، اور اس فرش پر وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس ذکر سے رب ذوالجلال کی رضائیں حاصل ہوتی ہیں، پروردگار عالم کے پسندیدہ بندوں کا ذکر اس فرش عزا سے کیا جاتا ہے علیکم السلام، اور اس ذکر کے برپا کرنے کے ذریعے سے، اس فرش عزا کے بچھانے کے ذریعے سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے، جو ثواب کثیر حاصل ہوتا ہے، اسے ہم ایصال اور ارسال کرتے ہیں ان مرحومین کی جانب کہ جو ہمارے منظور نظر ہوتے ہیں. زان محترم، آج کی حد تک آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کرنا ہے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اعتبار سے ان کی نگاہ میں، نسبت ہمارے یہاں پر بہت زیادہ اہم شے اور اہمیت کی حامل ہے، مگر اس سے قبل یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو ہم ذکر برپا کرتے ہیں، جو مزا کا فرش بچھاتے ہیں، یہ جو مجلس عزا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آیا ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ان مجلسوں کے ذریعے سے انٹروڈیوس کروا رہے؟ گویا ہم یہ مجلسیں کر کے اہل بیت پر کوئی احسان کر رہے ہیں کہ ان کا بول بالا ہو جائے گا اس دنیا میں، ان کی शोहरत हो जाएगी और लोग उन्हें पहचानने लगेंगे, और अगर हम मजलिसें न करें तो कोई उनका जानने वाला उन्हें पहचानने वाला नहीं होगा। ये बात तो तय है कि अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम की फर्दे, ये हस्तियां, वो हस्तियां हैं कि जिन्हें जमीन पर जितना जाना जाता है और जमीन पर लोग इनकी जितनी मारिफत रखते हैं उससे कई गुना ज्यादा आसमानों पर इनकी मारिफत रखने वाले अफराद मौजूद हैं। इनकी शोहरत, इनके नाम जमीन पर जितने पुकारे जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आसमानों पर पुकारे जाते हैं। यही वजह है कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के एतबार से बात हुई, रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी सैयदा के वो नौ नाम है कि जिन नौ नामों से बीबी को आसमानों पर पुकारा जाता है, राजिया हो, मर्जिया हो, बतूल हो, मुहद्दिसा। ये एक रिसालत माब ने फरमाया जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के एतबार से, और रसूल ही ने फरमाया सरकार अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के एतबार से, कि जब आकर पूछने वाले ने रसूल से सबक पूछा कि आप अपने हुसैन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं या इतना प्यार क्यों जगाते हैं हुसैन पर, तो रसूल ने फरमाया हुसैन अल हुसैन अअरफु फिस समाए मिम्मा हुआ फिल अर्ज, जितना हुसैन जमीन पर जाना पहचाना जाता है उससे कई गुना ज्यादा आसमानों पर उन्हें जाना पहचाना जाता है। तो कहीं पर रिसालत माब ये फरमाते हुए नजर आए कि इन्नहु मक्तूबुन अला यमीन अर्श, कि यकीनन बेशक बेशक अर्श के दाहने हिस्से पर। अब अर्श का दाहना हिस्सा क्या है, उलमा ने इस पर बहस की है। अर्श के दो हिस्से, एक दाहना हिस्सा, एक यमीन है और एक यसार अर्श है। एक हिस्सा अर्श इलाही का इल्म इलाही से डिनोट किया जाता है और बयान करने वाले उलमा ने बयान किया, इसकी तफसील में हम नहीं जाते। यमीनी अर्श पर क्या लिखा है, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कि हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। लेकिन ये जो हम जिक्र करते फिर करते क्यों है, दरअसल ना जिक्र करने वाला जिक्र इसलिए करता है कि अहले बैत को पहचानवा दे, ना लिखने वाला मुसन्निफ या मुअल्लिफ इसलिए लिखता है कि अपनी लिखने के जरिए से, पीस ऑफ राइटिंग के जरिए से अहले बैत को पहचानवा दे, और ना शायर शायरी इसलिए करता है कि अहले बैत को पहचानवा दे, और ना मरसिया गो मरसिया खान इसलिए मरसिया पढ़ता है या लिखता है कि अहले बैत को पहचानवा दे। ये सब अहले बैत की पहचान के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए खिदमत करते हैं। इसकी मिसाल और उलमा और जाकिरीन ये मिसाल बारहा देते आए हैं और आपने सुनी भी होगी ये मिसाल। वो जो चार मिसरे हैं, वो जो कुछ मिसरे क्या है, वो बंद शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार ददार दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन को दीनदार जानने वाले और है, हुसैन को दीन मानने वाले और है। दीनदार नहीं कहा है, दीनदार तो हम और आप है कि हुसैन के सिखाए हुए दीन पर अमल करके दीनदार बनते हैं। दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन बचाने वाला भी हुसैन है। ये किसके मिसरे लिखे हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, अब हम सारे मिलकर बगैर इंटरनेट यूज किए, बगैर गूगल पे जाए, इनके कोई और मिसरे सुना दीजिए, बता दीजिए। लेकिन ये मिसरे ऐसे अजबर याद है कि बच्चे बच्चे को पूछे, याद नहीं होगा तो साथ साथ दोहराएगा, आधा आप बोले आधा वो मुकम्मल कर देगा। और कमाल यह है कि हमारी मादरी जबान में भी नहीं है, उर्दू में नहीं है, फारसी जबान में, लेकिन याद है। तो अब यह बताइए कि इन मिसरों के लिखने के जरिए से ख्वाजा ने हुसैन को पहचानवाया या कयामत तक अपनी पहचान सब करवा दी। ये मिसरे ख्वाजा को कयामत तक कबर कर गए, कयामत तक ख्वाजा को जिंदा कर गए। अब ये तो बात थी इंसानों की, कितने सारे सितारे हैं आसमान पर, उफ़ूक आलम पर कितने सितारे, अनगिनत सितारे, सूरज से बड़े सितारे, सूरज से ज्यादा रोशनी देने वाले सितारे। लेकिन कितनों के नाम हमें याद है, मुश्तरी का नाम किसे याद होता है, अतारुद का नाम किसे याद होता है, हबूल का नाम किसको किसको याद होता है? ये सारे सितारे मगर नाम याद नहीं होते, मगर एक वो सितारा जोहरा का सितारा जो जो डरे जहरा पे उतर आया था उसका नाम सबको याद है। और मलाइका परवरदिगार आलम ने जितनी अपनी मखलूकात और क्रिएशंस को खल किया है उनमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर, कसीर तादाद के अंदर परवरदिगार ने जिन्हें खल किया वो मलाइका है। मलाइका से ज्यादा बड़ी तादाद में अल्लाह ने और अपनी किसी खिलकत को खल्क नहीं किया, जिनका शुमार करना नामुमकिन है कि इतने फरिश्ते परवरदिगार आलम ने खल्क किए। मगर हमें किन किन के नाम याद है? एक जिब्रील का नाम याद है जो हुसैन का झूला झुलाने वाले, एक मिकाइल का नाम याद है जो हुसैन को रोजी झुलाने वाले, एक रिजवान जन्नत का नाम याद है जो हसनैन के दर्जी बनकर आ गए। गोया ये सारे मिलके बतला रहे थे, अगर अपने आप को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहते हो, अमल कर देना चाहते हो, तो आ जाओ अहले बैत के दर पे, उनकी खुदामी कर लो, अपने सर को यहां झुका लो, उसके बाद ये तुम्हें इतना बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे, जर्रे भी अगर बन के रहोगे तो आसमान में सूरज की तरह चमकने का काम दोगे। ये क्यों हुआ? इसलिए कि हम मंसूब हो गए उस दर से, इसलिए कि निस्बत हो गई हमें उस दर से कि जिस दर की अजमत को बयान करना नामुमकिन है, वो दर के जो अहले बैत का दर है। मुझे बताइए कि जहां कहीं रिसालत बाप तशरीफ ले आए उस महफिल में कि जिसमें एक कम सवादा कंबिया बैठे हुए हो, जब रिसालत माप उस महफिल में, उस हॉल में, उस मजलिस में तशरीफ लाएंगे, कोई एक नबी भी होगा कि जो अपनी जगह पर बैठा रहे, सारे अपनी जगह से बुलंद हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो वो मोहम्मद मुस्तफा जिनके लिए सारे अंबिया अपनी जगह छोड़कर खड़े रहे, वो मोहम्मद मुस्तफा जिसके लिए अपनी जगह से बुलंद हो जाए उसे फातिमा जहरा कहा जाता है। और वो रिसालत माँ जिस दरवाजे पे खड़े होके आए तथीर के नुजूल के बाद 3 माह 6 माह यहां तक कि रसूल की इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने तक रोजाना जब जाते थे मस्जिद नबवी, पहले दरे खाना सैयदा के सामने खड़े होते थे और कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुवा वमा दे मेरे सलाम कलपल मलाइका। अजीजान मोहतरम, रसूल वो कि जिन्हें सब सलाम करें और रसूल वो के जो दरे फातिमा जहरा पर खड़े होकर सलाम करें, ये अजमत बयान कर गए। लिहाजा कुरान करीम की आयत ये इरशाद फरमाती है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये निस्बत की बात है तो निस्बत को इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मस्तूरिन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन, ये बेशक कुरान करीम है। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताब मकनून, जो किताब मकनून के अंदर है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसे कोई मस नहीं कर सकता इल्लल मुतहरून। अब यहां पर अरबी से आशनाई रखने वाले इस नुक्ते से लुत्फ लेंगे कि यहां पर जो लफ्ज परवरदिगार आलम ने इस्तेमाल किया कुरान करीम की आयत में, ला यमस्सुहु है, ला यलमसुहु नहीं कहा है। मादा असलिया ला यमस्सुहु का मससा है, मस है, लम्स नहीं है। तो लम्स और मस में फर्क क्या है? बस इतना समझने के लिए, जब हम जाहिरी किसी शय को टच करते हैं ऊपर से तो हम कहते हैं लम्स, टच करना, और जब किसी शय में तसर्रुफ करते हैं तो कहते हैं हमने मस किया। जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि जब जनाबे जिब्रील ने आके कहा मैं आया हूं ले आहबा लकी गुलामन ज़किया, तो बीबी मरियम ने फरमाया अन्ना ली गुलामन, मुझे कैसे बेटा मिल सकता है कि लम यम ससनी बशरुन, कि मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया। और मस्सनीय जुर्रो इन्नी मस्सनीय जुर्रो, परवरदिगार मुझे बचा, अपनी पनाह में ले ले, इसलिए कि शैतान ने मुझ में तसर्रुफ किया। शैतान मेरे ख्यालात और तखय्युलात में तसर्रुफ करने की कोशिश की है और मुझे राहिरात से बहका रहा है, गुमराह कर रहा है। मस के माना तसर्रुफ करना और लम्स के माना ऊपर से टच करना। अच्छा, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, इसे कोई इसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता, तसर्रुफ नहीं कर सकता के माना क्या? इल्लल मुतहरून, पहले मुतहरून देख लें। मुतहर वो के जिसे ताहिर किया गया, वो कि जिसे पाक किया गया, वो जो पाक है नहीं, वो कि जिन्हें पाक किया गया मोटा हर बाबे तफाउल से है, और कौन सा सीगा है इसमें, मफूल का सीगा है, मुताहर जिन्हें पाक किया गया, कौन है कि जो इस कुरान करीम के अंदर तसरुफ कर सकते, यानी क्या इसकी तफसीर क्या है बयान कर सकते हैं, इसका बातिन क्या है बयान कर सकते हैं, इसकी तावील क्या है बयान कर सकते हैं। तसरुफ के माने ये हुए कि कौन है कि जो इसके अंदर छुपे हुए राज है उनको निकाल कर आश्कारा कौन कर सकता है, वो कर सकता है जिन्हें पाक किया गया। कौन है कि जिन्हें पाक किया गया, कुरान करीम की आयत बताती है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आप है किन्हें पाक किया गया, परवरदिगार आलम ने किन्हें पाक रखा, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरुन। तो ये क्या कहा जा रहा है, कुरान करीम इतना पाक है कि कोई इसके अंदर तसरुफ नहीं कर सकता, तो क्या माना हुए, ये इसकी पाकिजगी की बात हुई, कुरान करीम की पाकिजगी की बात हुई। दो नंबर दो, फखलान अलैक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा फखलान अलैक फइन्नका बिलवादिल मुकद्दसे तुआ। तुआ कौन सी जगह है, तुआ वो मैदान था कि जहां पर हजरत मूसा अलैहि सलाम पर किताब तौरात परवरदिगार आलम ने नाजिल की। लिहाजा जब हजरत मूसा अलैहि सलाम आ रहे, अब मुफस्सिरीन इसके अंदर हजरत मूसा अलैहि सलाम से फॉलो करवाया, फखला नाले अपनी नालेनों को निकाल दिया, वो नालेन से ये फिर हम तफसीर के अंदर जाकर देख सकते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल था जिसको फॉलो करवाया, क्यों, एहतराम उस जगह का, उस जगह का एहतराम। उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया, बिस्मिल्लाह रहमान ताहिर बैत दिया ले ताइफीना वल आकिफीना वल रुकअइस सुजूद। ए इब्राहिम पाक तैयब ताहिर रखे इस घर को कि जिस घर में आने वाले तवाफ करने वाले हैं, एतिकाफ करने वाले हैं, रुकू करने वाले और सुजूद करने वाले, तो पाक रखने तैयब व ताहिर रखने का जो हुक्म परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को अपने मुबारक और पाक घर को दे रखा है, क्यों, इसलिए कि उस घर का एहतराम है, ये एहतराम वाला घर कि जिसे परवरदिगार आलम यह कह रहा है कि इसे पाक रखो, गोया एहतराम क्यों है उस जगह का, वादिये दुआ का एहतराम क्यों है, मस्जिदुल हराम का एहतराम क्यों है, वो मस्जिदुल हराम अगर नजासत के आलम में हो तो उस मस्जिद के अंदर से हो के पास भी नहीं हो सकते, मस्जिदुल हराम के लिए खास ये मसला फिकिया है, और अगर हमारे शहर की मस्जिद है तो अगर नजासत के आलम में उससे गुजर सकते हैं, पास बाय हो भी सकते हैं तो ठहर नहीं सकते, ये एहतराम है। एहतराम क्यों है, कुरान का एहतराम क्यों है, इसलिए कि ये कुरान सिर्फ किताब नहीं है, किताबुल्लाह है, इसे अल्लाह से निस्बत है। ये अल्लाह का घर एहतराम वाला क्यों है, इसलिए कि सिर्फ घर नहीं है, बैतुल्लाह है, अल्लाह से निस्बत है इसे। उसी तरह से ये जो मकाम है, जो मैदान की जहां पे हजरत मूसा अलैहि सलाम से नालेने उतरवाई जा रही है, उसका एहतराम क्यों है, इसलिए एहतराम है कि ये जगह वो है कि जो निस्बत रखती है उस किताब से कि जो अल्लाह नाजिल कर रहा है, बोला ये मंसूब है परवरदिगार आलम से। तो अब जो जो शय अल्लाह से जुड़ती चली जाएगी उसका एहतराम पैदा होता चला जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि खाने काबा मस्जिदुल हराम भाई उसी ईंट से तो बना है कि जिस ईंट से हमारा घर बना है, उसी गारे से और उसी सीमेंट से और उसी बजरी से और उसी रेती से बना है कि जिस रेती से दुनिया की सारी इमारतें बनी है, लेकिन किसी इमारत के बाहर खड़े होके इसने उससे भी पहले उस शहर में भी दाखिल नहीं हो सकते जब एक खास यूनिफॉर्म में ना आ जाओ, जब तक एहराम में ना आ जाओ उस शहर में उस हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों, निस्बत, एहतराम। ये एहतराम क्यों है, निस्बत की वजह से है। अज़ीज़ मोहतरम बात को मजीद आगे बढ़ाएं, अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये कुरान करीम है तो आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूं कि असल जो कुरान करीम है वो कहां है, लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। یہ جو ہے یہ قرآن کریم کے اسی قرآن کریم کے الفاظ ہیں جو رسالۃ مآب نے تعلیم دی, اور ان الفاظ کی بھی اہمیت, یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں جو آج پرنٹ ہو کر ہمیں مل جاتے مصحف اور ایک بک کی فارم میں, یہ بھی عام نہیں ہے, یہ بھی موجودہ ہے, اور اس کو دیکھنے والے کی آنکھوں کے نور میں اضافہ بھی ہوتا ہے, پڑھنے والے کے دل کے نور میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جس پانی پر ان آیتوں کو پڑھ کے دم کر کے کسی مریض کو پلا دیا جائے تو شفا بھی مل جاتی ہے. مجھے بتائیے شیکسپیئر کے کسی پیراگراف, بہت ہی بڑا ماسٹر پیس اس کا لکھا ہوا کوئی پیراگراف, وہ پڑھ کے کسی کو پانی پہ دم کر کے کیوں نہیں پلاتے؟ بھائی شیلڈن کی ورسز جو ہے, ایلن ایتھرٹن کا کسی ایسی طاقت سے کہ جس طاقت نے کائنات میں شفا بانٹنے کا انتظام رکھا ہوا ہے, اگر کوئی شے اس سے جڑ جائے تو کیسا عالم ہو جاتا ہے؟ اب احترام. اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ اس خانہ کعبہ کی بے حرمتی فار ایگزامپل نہیں کی ہے, وہ جو ہمارے گھر میں تصویر لگی ہوئی تھی اسے آ کر کوئی پھاڑ دے, اللہ نہ کرے, استغفر اللہ رب العالمین. مثال اس کی یوں دیکھ لیجئے, میرے گھر میں کوئی آئے اور میرے والدین کی تصویر لگی ہو, والد صاحب کی تصویر لگی ہو چلے, اور کوئی آ کر اس تصویر کو دیوار سے اتارے, اتنی دیر میں جتنی دیر میں ان کے لیے کچن میں گیا تھا شربت وغیرہ بنانے کے لیے کہ ان کو سرو کروں, جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے ایسے دیکھا میں نے ان کو کہ ان کے ہاتھ میں یہ تصویر ہے اور وہ اسے اٹھا کے دے مار رہے ہیں زمین پر, تو کیا ہوگا؟ اچھا نہیں لگے گا, اذیت ہوگی, اور اگر میں کچھ نہ بھی کہوں تو مجھے تکلیف ضرور ہوگی, اور اگر میں ان کو کچھ ریکویسٹ کروں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا برادر, میرے بھائی ایسا کیوں کیا, کہیں گے میں نے تصویر ہی کو تو گرایا ہے, آپ کے والد صاحب کو تو نہیں گرایا, میں نے تصویر ہی کو تو گرایا ہے, میں نے آپ کے والد صاحب کو تو اوپر سے آج اٹھا کے زمین پہ نہیں پھینک دیا نا, میں تو صرف تصویر کو گرایا ہے, تو بے احترامی میں نے آپ کے والد کی نہیں کی ہے, میں نے صرف آپ کے والد کی تصویر کی ہے, تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا بھائی یہ تصویر نہیں ہے, یہ میرے والد کی تصویر ہے, اس وجہ سے جو احترام میں اپنے والد کا کرتا ہوں وہی احترام اس تصویر کا بھی کرتا ہوں. آپ عزیزان محترم, اگر کوئی آ جائے اور آنے کے بعد دیکھ کر یہ کہے کہ بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا, یہ زری میرے لیے بالکل ویسی زری ہے, یا مثال کے طور پر تازیہ تابوت, اس تابوت کو دیکھ کے بھائی مجھے تو رونا نہیں آتا, تو تصویر سے سمجھیے گا اس بات کو, اپنے جذبات کو اور ہمارے آپ کے جذبات کو اور اس آنے والے کے جذبات کو, کہ بھائی مجھے تو تابوت کو دیکھ کے رونا نہیں آتا, مجھے تو علامہ مبارک کو دیکھ کے رونا نہیں آتا, آپ کو اس لیے رونا نہیں آتا اس لیے کہ آپ کے جذبات اس سے ملے ہوئے نہیں ہے. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کسی خدا نہ خواستہ دادی نانی پروردگار سب کے رشتے داروں کو بہن بھائیوں کو والدین کو اور جو جو رشتے دار زندہ حیات ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامتی ایمان کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے, اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات عالی ہیں بلند ہیں مزید بلند فرمائے متعالی فرمائے. اگر میں اپنی دادی کا مسلح لے کے بیٹھا ہوں اور اس مسلح کو دیکھ کے رویا جا رہا ہوں تو عین ممکن ہے کہ کوئی آ کر کہے گا کہ یہ شاید دیوانے ہو گئے یا ان کے ذہن پر کچھ اثر ہو گیا ہے. جب وہ آ کر مجھ سے پوچھے گا نا کہ تم یہ مسلح دیکھ کے کیوں رو رہے, مجھے تو مسلح دیکھ کے رونا نہیں آ رہا, تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ میری دادی تھی اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے, تیری دادی نہیں تھی نا, اگر تیری دادی ہوتی تو اسے اس کے ساتھ تیرے بھی وہی جذبات ہوتے کہ جو میرے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مجھے رونا. اچھا اب مزید ہم بات کو آگے بڑھائیں, ہم جو جتنے بھی اعمال افعال انجام دیتے ہیں, ارکان اعمال افعال نہیں ارکان ہے بھائی, وہ چاہے عمرہ کیوں یا حج کیوں, ہم جاتے ہیں مکہ معظمہ مدینہ منورہ, تو مکہ معظمہ میں تو ارکان ہے, کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں, مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, تکسیر کر رہے ہیں, پھر طواف النساء کر رہے ہیں. اگر کسی کو بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو ان سارے اعمال کا, इन अरकान का बैकग्राउंड आप किसी को नहीं बताएं और बस ले जाकर उसको वो वीडियो दिखा दीजिए कि हम सही कर रहे हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और दूसरे पहाड़ से पहले पहाड़ की तरफ जा रहे हैं और दरमियान में जहां से ग्रीन लाइट शुरू हो रही है दौड़ना शुरू कर रहे हैं, हरवला कर रहे हैं, तेज तेज भाग रहे। अगर बैकग्राउंड नहीं बताएंगे कहेंगे ये दीवाने हो गए हैं, अगर वो समझेगा नहीं बैकग्राउंड को तो कहेगा ये दीवाना हो गया। एक बात, दूसरी बात, बुत परस्त देखेंगे खाने काबा के गेट तवाफ करता हुआ या खाने काबा के तरफ रुक करके सजदा करता हुआ हमें देखेगा तो कहेगा भाई भाई ये तू हमारा, हम बुत को पूछते हैं तुमने एक स्क्वायर घर बना लिया उसको पूछते हो, हम कहेंगे नहीं 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 फर्क है, बहुत फर्क है काबे को सजदे करने सजदा करने में और काबे की तरफ मुंह करके सजदा करने में बहुत फर्क है। हम तुम जो अपने बुत की तरफ रुक करके सजदा करते हो तो तुम बुत ही को सजदा करते हो, हम जो काबे की तरफ रुक करके सजदा करते हैं तो सजदा अल्लाह की किबरियाई को करते हैं, रुख काबे की जानिब करके करते हैं, समझे। अच्छा, काबे की जानिब हमारा रुख है, रुख काबे की तरफ है, सजदा अल्लाह की किबरियाई को है। उसी तरह से जो आलम और ताजिए को चूमते हैं दरअसल उसका एहतराम करते हैं, उसको पूजते नहीं है, इसलिए कि हमारा हाथ अलम और ताजिए पर होता है, चूमते हुसैन की इमामत को है, चूमते अब्बास की इनायत को है, और जो हम सजदा करते खाके शिफा पर, ये जो खाके शिफा पर सजदा करना है ये उस तुर्बत को सजदा करना नहीं है, तुर्बत पे सजदा करना है। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, या अली या अली। हम तुर्बत को सजदा नहीं कर रहे, हम तुर्बत पर सजदा कर रहे, और इसकी हमारे पास लॉजिकल लिटरल रिलीजियस रीजनिंग है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा खाक पर होगा, सजदा जमीन पर होगा। हम इस तुर्बत पर इसलिए करते हैं कि दुनिया की जो अफजल तरीन जमीन रिवायात आइमा अथार अलैहिस्सलाम से समझ में आती, या जमीन काबा या जमीन करबला, या जमीन मक्का या जमीन करबला, उसमें भी जमीन करबला। अब ये देखिए ना, जब बात होती है कि चले छोड़े इस जानिब नहीं जाता मैं, लेकिन हम उस जमीन पर लेकर उस जमीन की मट्टी लेकर आते हैं कि जिस पर एक ऐसा सजदा हुआ था कि जिस सजदे की यादगार अब कयामत तक सजदे होते रहेंगे, अब कभी सजदा रुकेगा नहीं, एक ऐसा सजदा हो गया करबला में। लेकिन ये कहना, अब बहरहाल वो फिर वो उससे पॉइंट निकल रहा, लेकिन हम उस जानिब नहीं जा रहे क्या। तो हम चूमते हैं उस निस्बत की वजह से, किस निस्बत की वजह से भाई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शहीद किए गए नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऑफर कर दिया था परवरदिगार आलम के सामने और तय कर लिया था, सरे तस्लीम हम कर चुके थे, बिल्कुल जिबा हो चुके थे, अल्लाह ने तय कर लिया कि अब मुझे इस्माइल को हटाकर गोसफंद को ले आना है, वो फदाए ना हो जिबह अजीम, जिबह अजीम से एक्सचेंज कर लिया हमने, अब जिबह अजीम की तरफ ये जो रुक गया ना इम्तिहान यहां पर, अब ये इम्तिहान कहां पूरा होगा, जमीन मिना पर तो रुक गया एक पॉइंट पर आकर, अब ये मुकम्मल कहां होगा, इसकी मेराज कहां होगी, जमीन करबला पर। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खंजर के नीचे आ गए, काबिले एहतराम वो दुम्बा कि जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह आ गया, गोसफन वो शीप, वो काबिले एहतराम। सूरह मायदा की इब्तदाई आयतें पढ़िए, वल कलाइद, मैं पूरी आयत ही पढ़ूंगा, कलाइद का जुमला जाकर देखिएगा, कलाइद किसे कहते हैं, नेकलेस को कलादा कहते हैं अरबी जबान के अंदर, कलाइद एक नेकलेस नहीं, नेकलेसेस। भाई हम कहेंगे कि वो तो एक दुम्बा था, तो आप सिर्फ कलादा लिखिए, एक कलादा नहीं कलाइद। अब कयामत तक जितने नेकलेसेस आएंगे, कौन से नेकलेसेस, जितनी भी कुर्बानी के जानवर, अब कयामत तक हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के नाम पर याद में हर साल जिबा किए जाते रहेंगे, उनके गलों में पड़ा हुआ वो कलादा, वो नेकलेस, वो रस्सी, वो भी काबिल एहतराम है। क्यों, निस्बत जुड़ गई है, वो तो एक जानवर से जुड़ी है, मौलाना साहब एक जानवर से जुड़ी है, भाई जानवर भी जुड़ा हुआ है, जानवर भी मंसूब है, जानवर मंसूब है उस याद से कि जो याद एक अजीम कुर्बानी की याद है, अजीम तरीन नहीं, एक अजीम कुर्बानी की याद है। پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں فدا ہونے کے لیے آ گئے محترم، وہ دمبا محترم، اس کے گلے میں ڈلی ہوئی رسی محترم، تو اب حسین ابن علی کے جو قربان ہو گیا راہ الہی میں وہ بھی محترم، جس زمین میں دفن ہوا وہ زمین بھی محترم، اور اب ان کی تابوت کی جو شبی بنائی جاتی ہے وہ بھی محترم، پتھر تو بت بھی تھے کہ جنہیں توڑا گیا، اور پتھر وہ بھی ہے حجر اسود کی جسے چوما جاتا ہے، آپ کہہ دیجئے بھائی پتھر ہی تو ہے، آپ کہہ دیجئے کہ پتھر ہی تو ہے، چومنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن نہیں، وہ پتھر کے جسے رسول نے توڑنے کا حکم دیا اس کے ساتھ بت پرستی کی نسبت جڑی ہوئی تھی، غیر خداؤں کی نسبت جڑی ہوئی تھی، اور یہ جو حجر اسود ہے یہ وہ ہے کہ جس کی نسبت رسالت ماب نے ایسے بیان کیا کہ یہ کون سا ہے، کیا ہے حجر اسود، اس کی تاریخ میں ہم نہیں جا رہے، دو تین دن پہلے بات اس کے اعتبار سے حجر اسود کے اعتبار سے ہو گئی ہے، تو وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، لیکن ایک کو چومتے ہیں اور ایک کو توڑا گیا۔ اب بتائیے عزیزان محترم، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اور وہ جو تین شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں، وہ بھی کنکر مارتے ہیں نا وہاں جا کر، یہ جو رمی جمرات کا جو ایریا ہے منا کے اندر، وہاں پہ کیا کبھی کسی کو شیطان ملا، ان کیا ہے عقبا وسطا صغرا، کبرا وسطا صغرا، یا جو بھی تین نام ہے، ان وہاں پہ ہمیں کہیں پہ پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے پہ شیطان ملا؟ نہیں ملا۔ ہم وہاں گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، دروازہ کھلا، ایک دن ہم نے دیکھا کہ رائل فیملیز آئی ہوئی ان کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے دروازہ کھلا، اندر سے ہم نے جا کے دیکھا، ہمیں خدا نظر آیا، نہیں ملا۔ تو نہ یہاں پہ طواف کرتے ہوئے اندر کھلا، نہ یہاں پہ کنکر مارتے ہوئے شیطان ملا، لیکن دونوں جگہ پہ ہمیں نسبتیں ضرور ملی۔ اسی طرح سے یہاں پر جب جب علم برآمد ہوتا ہے، جب جب تابوت برآمد ہوتا ہے، جب جب زلجنا برآمد ہوتا ہے، چاہے زلجنا پر سوار وہ سواری نہ ہو، تب بھی نسبت جڑی ہوئی ہے، تابوت کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے۔ اور جو ہم یہاں پہ اگر کوئی یہ جو کیا مختلف انداز سے جو ہمارے رسم عزاداری، جس کو ہم رسم عزاداری کہہ رہے ہیں، اگر نسبت جڑی ہوئی ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور واقعہ کربلا کے ساتھ اور اس میں حرام نہیں ہے، تو وہ شاعر حسینیہ ہے، اور شاعر حسینیہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی تو یہ اس کے دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ کیا ہے کیا شاعر اللہ؟ شاعر اللہ ہے کیا؟ شاعر اللہ ہے اللہ کی نشانی، شعیرہ کی جمع ہے شعائر، شعیرہ کی جمع ہے شعائر، تو شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، یعنی کہ اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں، خانہ کعبہ اللہ کی یاد دلا رہا ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام حالانکہ ایک نبی کے قدم کے نشانے اس پر، مگر وہ اللہ کی یاد دلا رہا ہے، اس لیے کہ یہ پتھر وہ تھا کہ جس پر قدم رکھے اللہ کا حکم پورا کیا گیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے ذریعے سے، وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کہ جو پہاڑیاں ہیں، لیکن وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور سو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں۔ یہ جو علم سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے نا، خدا را کبھی یہ نہ کہنا کہ ایک لکڑی کا تو ٹکڑا ہے، بس ایک کپڑے ہی کا تو ٹکڑا ہے کہ جسے لپیٹ دیا گیا ہے، ایک چاندی کا یا کسی اور دھات کا ایک پنجا ہی تو لگا ہوا ہے، نہیں نہیں، اس علم کو دیکھتے ہیں تو حسین ابن علی کی یاد آتی ہے، اور اس علم کو دیکھتے ہیں تو وہ بازو یاد آتے ہیں کہ جو اطاعت حسین ابن علی میں کاٹ دیے گئے تھے، اور حسین ابن علی کون؟ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ضرور زمین پر امام بررہ، امام حق، کہ جن کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے کہ رب ذوالجلال کے حکم کی اطاعت ہو رہی ہے، شاعر اللہ، شاعر آزاداری، وہ کرتا کہ جو کرتا آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی رو رو کے یوسف پہ چلی گئی تھی، وَبْيَزَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، آئے ہیں کرتا لے کر آئے ہیں، उस कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से लगाया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई वापस आ गई। इस कुर्ते के अंदर जान कहां से पैदा हो गई? उस निस्बत की वजह से जान पैदा हो गई कि जो निस्बत हजरत यूसुफ नबी खुदा से जुड़ी हुई है। हम और आप चाहते अपने दरवाजे की चौखट पर खड़े होते, बैल बजाते, इंतजार करते कोई अंदर से आएगा, दरवाजा खोलेगा, फिर मैं अपने घर में चला जाऊंगा। कितनी मर्तबा हमने ऐसा किया है कि घर में दाखिल होते हुए झुके चौखट को चूमा हो या दाएं बाएं जाने चौखट को चूम के फिर अंदर गए हो। जब हम अपने घर के दरवाजे में खड़े होते हैं तो ये नहीं करते, लेकिन जब अबा अब्दुल्लाह हुसैन के रोजे पर खड़े होते हैं, जब सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के रोजे पर खड़े होते हैं, जब तक चौखट न चूमे, जब तक बोसा न दे दे तो अंदर नहीं जाते। इसलिए निस्बत है उस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कि जो अपनी सारी जिंदगी ताजे परवरदिगार में गुजार गया। अच्छा, आप ये निस्बत इस जानिब से भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंस इस निस्बत की। अम्र इब्न अब्दुहुद की बहन, अम्र इब्न अब्दुहुद की बहन आई है अपने भाई के लाशे पे, अम्र के लाशे पे आई। उसने आके पूछा कि किसने कत्ल किया है मेरे भाई को? कहा अली इब्न अबी तालिब ने। वो अशआर हैं कि जो उलमाए किराम ने, उलमाए तारीख ने, मौरखीन ने अपनी किताबों में लिखे हैं। अभी वक्त मुकम्मल हो गया वरना मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता। उन अशआर के जरिए से पढ़ पढ़ के अली की फजीलत बयान कर रही है अपने भाई के लाशे पे। किसने मारा? अली ने मारा। कहा तुझे चूम के एक ऐसे शख्स ने मारा है कि जो अदालत के साथ काटता है, किसी को बेजा कत्ल नहीं करता, उसकी तलवार कभी किसी मजलूम पर नहीं चली, लिहाजा मैं तुझ पर नहीं रहूंगी। अली से निस्बत। एक काफिर की बहन अपने भाई पर रोने से इनकार कर रही है इसलिए कि उस पर तलवार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की चली है। निस्बत उलमा की सीरत में देखेंगे आगा बरोजर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह आलल्लाहु मकामहु शरीफ, आंखें कमजोर हो गई। एक दिन आगा बरोजर्दी को हल्का मातम में देख लिया किसी ने, तशरीफ ले आए और जो मातम करने वाले अफराद हैं उनके जिस्मों पे हाथ लगाते हैं, पसीने को उठाते हैं और अपनी आंखों पे मलते हैं। जब पूछा गया तो कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा था? भाई मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मैं अपनी आंखों की बिनाई वापस आने का सामान कर रहा था। मैं उन मातमियों के पसीनों को अपने आंखों में लगाने के जरिए से ये इंतजाम कर रहा था कि ये मातमी, अब ये मेरे अल्फाज हैं, कि वो मातम करने वाले के जो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के गमों में चूरा के अपने सीने पे मातम करते हैं, उन्हें जो पसीना निकल रहा है वही आम हालत में निकल रहा है ना पसीना, लेकिन ये आलम आम आलम नहीं है। ये मातम करते करते जो पसीना निकल रहा है, कितने अफराद आपको ऐसे नजर आएंगे कि रोते हुए अफराद उनके अश उठाते हैं, अपने चेहरों पे मलते और चले जाते हैं। जरिया अब्दुल्लाह अलैहि सलाम, जरिया सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम, नहीं समझ में आता, लेकिन जब निस्बत के अंदाज से देखें तो कहता है कि ये क्या है, आंसुओं का कमाल। कमाल इन आंसुओं में अगर पैदा किया है तो उस निस्बत ने पैदा किया है जो हुसैन इब्न अली अलैहि सलाम से जुड़ गई है। बस अज़ान मोहतरम, मैंने बात को यहां पर रोक दिया और जमीन पर हुसैन का मातम करने वाले अपने अंदाज से करते हैं मातम, मगर आसमानों पे रब्बे जुलजलाल अपने मलाइका के लिए क्या इंतजाम करता है वो जरा सुनिएगा। जैसे ही मुहर्रम का चांद उफुक़े आलम पे नमूनार होता है तो परवरदिगारे आलम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का खून आलूदा कुर्ता आके अर्श की सतह पे मुअल्लक कर देता है। सारे मलाइका को हुक्म देता है, वो मलाइका उस कुर्ते के गिर्द आके जमा हो जाते हैं और सारे के सारे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते को देखते जाते हैं और रोते जाते हैं, क्रिया करते जाते, मातम करते जाते। हाँ अजीजो, ये अय्याम असीरी अहले हरम के अय्याम है, ये वो अय्याम है कि जिनमें अहले हरम को कभी बाजार कूफा से,
कभी दरवाजे कूफा में, कभी कहीं, कभी कहीं लाया जा रहा है। आलम यह है कि बीबियों के हाथ रोशन में बंधे हैं। अरे बीमार इमाम सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़िया है, पाओ में बेड़िया है, गले में खारदार तौफ है, सूरज की तमाजत इतनी है, अरे इतनी गर्म सूरज की गर्मी है, अरे सैयद सज्जाद की हाथों की हथकड़िया गर्म हो जाती है, पाओ की बेड़िया गर्म हो जाती है, गले का खारदार तौफ गर्म हो जाता है। अगर कभी किसी बच्चे को पानी लाकर दिया जाता है, अरे कभी सकीना के हाथों में अगर पानी का कूड़ा आता है, ये मासूमा बच्ची पानी को पीती नहीं है बल्कि पहले सैयद सज्जाद की हाथों की हथकड़ी को पहले। बाजारे कूफा में एक सहाबी ने देखा, कहता है कि मैंने एक कैदी को देखा कि जिसके सर पे अमामा है। कूफा में ये काफिला दाखिल हुआ, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने गर्म पानी फेंका, किसी ने क्या फेंका, किसी ने गर्म अंगारा फेंका। मैंने देखा एक कैदी है, आगे आगे है, कटे हुए सर उसके आगे है, बेमकना बेमकना की बीबियां उनके पीछे पीछे है, मगर हाँ एक मरतबा एक अंगारा उस कैदी के अमामे पे जाके रुका। मैंने देखा इसका सर तो जल रहा होगा, मगर क्या वजह है कि ये अपने सर से उस अंगारे को हटाता नहीं है। अरे करीब जाके जब मैंने उस कैदी का आलम देखा, तो मैंने देखा कि हाथों में हथकड़ियां दे, पांव में बेड़ियां दे, गले में खारदार तौफ है। मैं समझ गया रे गया अपने सर से ये किस तरह से अंगारा हटाना चाहे तो हटा सकता है। एक मर्तबा में आगे बढ़ा, मैंने संगारे को उसके सर से हटा के जमीन पे फेंका। मैंने पूछा ए तेरी तू कौन है, कहां से आ रहा है, किस जगह का तेरी है। कैदी ने ये सुना, उसके बाद बस आयते कुरानी की तिलावत करने लगे, कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साबी। कहता मैंने जब सुना कि आयते कुरानी की तिलावत कर रहा है, मैंने उस कैदी से पूछा अरे कैदी ये आयत तू क्यों पढ़ रहा है। ये आयत तो वो आयत है कि जो अहले-ए-बैत की शान में नाज़िल हुई। एक मर्तबा जवाब में फिर उसने एक आयत पढ़ी, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। एक मर्तबा पूछने वाला आता है, सहाबी है रसूल है, तलब कर पूछता है ये आयत तू क्यों पढ़ रहा है। ये आयतें तो वो है कि जो अहले-ए-बैत की शान में नाज़िल हुई है, तेरा क्या ताल्लुक। फिर मारा सज्जाद ने एक आयत पढ़ी, पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमान एक मर्तबा कहता है तुझे रसूल खुदा का वास्ता, बता तेरा क्या ताल्लुक है अहले बैत से। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने तरफ पर पूछा, बता तू अहले बैत की फर्दों में से हस्तियों में से जानता किसे है। सहाबी रसूल था, पुराना सहाबी था, बूढ़ा सहाबी था, तो अपना कहता है अरे मैं ना पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा। मैंने हुसैन को खिलाया, मैंने हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद को अपनी गोद में खिलाया, मैं ना पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा। एक मर्तबा आगे बढ़े, कहा पहचान ले मैं ही सैयद सज्जाद, और अगर हुसैन को देखना है तो नौके नेजा पे वो कटा हुआ था, तू ज़ियारत कर ले हुसैन।
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا وعلى محمد اي منقلب ينقلبون پروردگار اتھے راستہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرمائے سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، اس مجلس سے عزا کا ثواب جو منظور نظر مرحومین ہیں ان کو ایصال و ارسال فرما پروردگار، ان کے درجات بلند ہیں انہیں مزید بلند فرما پروردگار، صاحب العمر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ما تم حسین یا حسین.